आपने फिदक की बयान कर दी और उसके जवाब में जो शहीद सारे आयतुल्लाह नूरुल्लाह शुस्तरी लिखते हैं, उसके जवाब में इसका रंग उड़ गया और बेसाख्ता इसने कहा, इसके जरिए आपने मुझे पैगाम दिया है और वो पैगाम ये है कि बनी अब्बास ने हुकूमत को गास्प किया है और दरअसल हुकूमत की हकदार बनी फातिमा है। ये पैगाम आपने दिया है, इन नाराहती के आलम में ये जवाब दिया। गोया ये मानवी हद बयान कर दी थी कि फिदक को तुम उस रगबे में नहीं तलाश करो। फिदक क्या है? दर हकीकत फिदक इससे बढ़कर है, तमाम हुकूमत इस्लामी को अपने अंदर लिए हुए हैं, ये फिदक है। और इसको और ज़्यादा वाजे किया अबिल हदीत ने। अबिल हदीत जो मोतज़ली एक बहुत अच्छे शरण है जब बलागा इन्होंने लिखी और इसमें ही ये वाक़ा मिलता है कि एक रोज़ मैं अपने उस्ताद के साथ बैठा हुआ था, मुदर्रिस जो है अली फारूकी के साथ बैठा हुआ था, कि बेसाख्ता मैंने सवाल किया, उस्ताद जनाब फातिमा ज़हरा ने जो फिदक का मुतालबा किया था, जो फिदक का मुतालबा किया था वो हक था? का मेरे उस्ताद ने मुख्तसर जवाब दिया, कहा हाँ वो हक था। गोया कहा हक था। कहा मैंने उसके जवाब में देखा, जब बहुत इख्तसार देखा जवाब में, फिर सवाल किया, अगर हक था तो इसे वापस क्यों नहीं किया गया? का मेरे उस्ताद कभी शोखी नहीं करते थे, लेकिन उस रोज़ मैंने उन्हें शोखी के अंदाज़ में देखा, मुस्कुरा के उन्होंने ये जुमला कहा, अगर आज फिदक को वापस कर देते तो फातिमा आ जाती मुतालबा खिलाफत लेकर, और फिर चूँकि फिदक को दे दिया था लिहाजा साबित हो जाता फातिमा जो मुतालबा करती हैं वह हक होता है, लिहाजा इन्हें खिलाफत को भी देना पड़ता। गोया और फिर खुद कहते हैं कि मैंने कहा, गर्चे बात उन्होंने शोखी में कही थी लेकिन हकीकत पे मबनी थी। यानी ये मानवी हद थी फिदक की। फिदक जब हम देखते हैं अदन से कैसे मिलता है, जितनी हुकूमतें इस्लामी हैं वो सब फिदक में शामिल हो जाती हैं और फातिमा का पैगाम हम तक पहुंचता है, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, कि जब इसमें जो है वो आकर तजावुज़ हो, जब इसमें दुश्मन की पेशरफ्त हो, बस फातिमी वो है जो इस तजावुज़ पे खड़ा हो जाए।
अहसन दो बेहतरीन जवाब, इंशाल्लाह ताला आप सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे फ़रहान के बयान से। और यहाँ तक दो बात वाज़ेह हो गई, फदक के अगर जो ज़मीन सिर्फ बाग भी कहा जाए बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये बाग रसूल अल्लाह ने अदा किया है, क्योंकि ये बाग खुद में खुदा से अदा किया गया है, क्योंकि ये बाग एक निशान है कि फातिमा ज़हरा भी ज़िलकरबा रसूल अल्लाह है। ये बात इस बात की सबूत है कि फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रतबा रसूल अल्लाह से क्या है। लेकिन फिर हम आगे जाकर इमाम के कलम की रोशनी में देखा, पता चला फदक बाग भी है, फदक खिलाफत भी है, फदक कुल सरजमी इस्लामी है, कुल हक औलाद फातिमा और औलाद रसूल है। अब एक और माना पर जाएंगे, इन तमाम बातों के बाद एक और फदक माना सामने आता है, वो क्या है? तहरीक फदक, जुम्बिश फदक। इन्हें तहरीक फदक में क्या कहा जा रहा है, क्या बयान हो रहा है कि तहरीक फदक का मतलब ये कि किसी भी जालिम के गासिबाना रवैये के मुकाबले में खड़े होने का नाम ये फदक है। इन्हें खुद पर ये फदक किया है, यानी बाग भी है, खिलाफत इस्लामी भी है और तजावुज के खिलाफ फरियाद और आवाज भी। इस सफर में मैं हर सीमा को दोबारा जहमत दूंगी, आप अगर इस सफर में कुछ और बयान करना चाहें तो फरमाएं।
कि हम जब अराजी फिदर को देखते हैं और फदर की ज़मीन की हैसियत को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये फिदर जो खुतबे के तौर पर सामने आया और इसके ऊपर एक वक्त आया जो खिलाफत के ज़माने में एक नाम लिया इतजाज कर रही हैं, तो माजी में ये फिदर जो है वो ज़मीन के तौर पर इसका कई जगह पर बैठ पा रहा हुआ। ये जब अमीर शाम के पास आया है, जब तक अमीर शाम के पास पहुंचा है, तो अमीर शाम ने इसके तीन हिस्से किए हैं। एक हिस्सा अमीर शाम यानी अमीर शाम से मुराद है यजीद का बाप, उसने अपने बेटे को दिया है एक हिस्सा, एक हिस्सा खलीफा सेगुन के बेटे उम
उमर बिन उस्मान को दिया है और तीसरा हिस्सा मरवान बिन हकम को दिया गया है। तो हम इसको देखते हैं कि इसकी माली हैसियत जो है ये उमरा के पास जा रहा है, यानी आम लोगों के पास नहीं जा रहा है कि ये तीन अफराद आपस में तकसीम बंदी कर रहे हैं। उस वक्त के वो अफराद के जो दुनिया के सामने हम और आप माजी में उनको जब देखते हैं तो वो अहम तरीन लोग हैं कि जो माली एतबार से बहुत मुस्तहकम है, यानी मरवान बिन हकम खलीफे सेगुन का दामाद है, माली तौर पर बेतहा मुस्तहकम है और ये जायदादें आज के दौर में भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, आज के दौर में भी हम स्विच अकाउंट देख रहे हैं, आज के दौर में भी हम लोगों के मालियात को देख रहे हैं। तो उस वक्त भी जब बड़े लोगों की मालियात तकसीम की गई है तो अमीर शाम ने तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया, मरवान बिन हकम के पास गया, खलीफे खलीफे सेगुन के औलाद में गया, खुद यजीद के पास गया। इतनी बड़ी जब यह अराजी थी तो ये अराजी उसके बाद जब बनू मैया का दौर आया तो फिर ये तकसीम होती रही, होते होते ये अराजी जैसे कि अभी ख्वार मेजमी ने बताया कि सातवें इमाम के दौर में आके फिर आपने इस अराजी को तहरीक में तब्दील किया। अब ये फिदक हमारे और आपके दौर में आज भी नाशनास नहीं है। जब लोग आज से 30 साल पहले उमरा करके जब मुस्तहबात उमरा अदा करने के लिए बाब उमरा से निकलते हैं तो वहाँ पे एक हमें और आपको मुस्तहब अमल दिया जाता है कि यहाँ पे खड़े हो के, क्योंकि आपका उमरा मुकम्मल हो गया है, यहाँ पे आप खजूरें तकसीम करें बाब उमरा पे। तो बाब उमरा पे बरसा बरस तक, यानी आज से 30 बरस पहले तक खजूरें जो तकसीम होती थी वो फिदक की खजूरें थी, यानी फिदक के ये बागात अभी तक थे। हम और आप ये समझ रहे थे कि फिदक हो गई, लेकिन खोई हुई फिदक को इस दौर के अंदर हाशमी रफसंजानी ने ढूंढ के निकाला। पहली चीज़ ये है कि आप इस फिदक को पहले आंखों से देखें कि ये फिदक है कि नहीं। हाशमी रफसंजानी ने जब अपना सफ़र किया है और इस सफ़र में उन्होंने हुकूमती सतह पे जब इस सफ़र को किया और ये हिजाज में पहुँचे हैं, तो इन्होंने जब शाह अब्दुल्ला से फिदक के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा हमारी फिदक महफूज तो है, हमारी फिदक की कितनी आराजी महफूज है। तो उन्होंने कहा आपकी फिदक महफूज है, आपकी फिदक के आराजी और उसके मिर्से महफूज है। तो छुपी हुई कोई हुई फिदक को ढूंढ के हाजिर पर फंजानी ने निकाला और उन्होंने कहा हमारा ये जो सफ़र है ये फिदक तक जाएगा। फिदक पर पहुँचे तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही वो फिदक के हदूद पर पहुँचे हैं तो वहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था अल फदर, और वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के चलते हुए लोगों को रोका और उन्होंने पूछा कि हम इस वक्त यहाँ कहाँ आ गए। तो उनसे बताया गया कि अब आप आराजी हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा में आ गए। और जब आप अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे आपको मस्जिद बताई गई कि ये मस्जिद मस्जिद हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से है। वहाँ की मस्जिद भी है कि जो इस वक्त फौरन आपको दिखाएंगे मस्जिद जहरा, और मस्जिद जहरा के बाद वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो अंदाजन तादाद लगाई गई का अंदाज़ा किया गया कि जितने लोग रहते हैं वो अहल बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत रखने वाले लोग हैं। फिर इसके बाद जब हाशमी रफसंजानी ने गवर्नर फिदक से सवाल किया कि आप उस ज़माने में जब अमीर हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैह का ज़माना था तो यहाँ चश्मे थे, यहाँ कुएँ थे, यहाँ जो चश्मे और कुएँ अमीर मोमिनीन के ज़माने के हैं वो हैं कि नहीं। उन्होंने कहा वो भी महफूज हैं, वो भी इस वक्त महफूज हैं और हम आपको वो कुएँ दिखा वो चश्मे दिखाते हैं। उनको चश्मा जब दिखाया गया तो उन्होंने जब पानी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये है कि तबरुक के पास आएँ और तबरुक न लें, तो उनको रोका गया कि आप ये पानी ना पिए इसलिए कि ये बहुत पुराना पानी है, हो सकता है इसमें कोई जरासीम हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तबरुक को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने पानी पिया और जब वो पानी पी रहे थे रो रहे थे उनके साथ फिदक का गवर्नर भी रो रहा था। तो अब आप इसकी हैसियत देखें कि ये जो कोई भी फिदक है अल्लाह ने इस फिदक की हैसियत को अभी तक बरकरार रखा है, यानी अब ये नहीं छुप सकती, अब ये किसी भी सूरत में छुप नहीं सकती। अब हम उसको देखते हैं कि ये तो ठीक है कि आराजी है, लेकिन आराजी और उस आराजी का ताल्लुक हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने तहरीक से कर दिया, बहाना लेके एक ज़मीन का हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमेशा के लिए तहरीक बुलंद कर दी। और ये तहरीक जो है जब वहाँ से चली तो आज तक चली आई, क्योंकि सातवें इमाम के दौर में इमाम को जब मौका मिला और इमाम को बराह रास्त गुफ्तगू करने का मौका मिला, बराह रास्त हुकूमत वक्त आपसे इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहा था,
कर रही थी। तो ये एक मीडिया था, जो मीडिया के जरिए आपने बता दिया कि ये जो अराजी है ये तहरीक है, ये अराजी जो है ये सिर्फ अराजी नहीं है, ये तहरीक। आप अगर समझते हैं कि ये सिर्फ खैबर वो है कि जो मदीने के करीब के बागात हैं, तो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि वो लोग जो फिदक में रह रहे हैं वो आल मोहम्मद के चाहने वाले लोग हैं। वहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा के नाम से, और ये अराजी मुख्तलिफ दौर में कटती रही, बढ़ती रही, इधर से उधर होती रही, जहाँ जहाँ ये बटी इसके असरात गए, और असरात ने फिर इसको एक तनावर दरख्त में शुमार कराया। और आज मैं और आप इस तहरीक फिदक को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो कुछ सातवें इमाम ने कहा था उसका एक हिस्सा हमें और आपको यमन की सूरत में नज़र आ रहा है।
आपको अंदाज़ा होगा कि इतना तूलानी सफ़र है
और कितना कठिन सफ़र है, इस सफ़र को ज़माने ज़बूर में बताया गया कि ये इतना खूबसूरत हो जाएगा कि एक औरत तन्हा सफ़र कर सकती है। आज तो मैं और आप अगर टैक्सी पे यहाँ से स्टेट टाउन जाना चाहें तो नहीं जा सकते, लेकिन ज़माने ज़बूर में सना को पैगंबर इस्लाम ने हाईलाइट किया है और तकरीबन आपकी हदीस में जब कोई खूबसूरत मंजर दिखाया है तो आपने सना का खूबसूरत मंजर दिखाया है। और अब हमारे सामने अदन है जो यमन का कैपिटल है, और इसके लिए हम देखते हैं कि यमन जो है वो अपने अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के मोहब्बत करने वालों को शुरू से समोए हुए। एक यमन से जब हम माजी को निकालते हैं, माजी से यमन वालों को निकालते हैं तो हमें आशिकीन की तादाद ज़्यादा मिलती है, और उनमें एक आशिक ऐसा मिलता है कि जो जिसने पैगंबर इकराम पैगंबर मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, लेकिन वो साहबी पैगंबर कहलाता है, और जिस दिन वो आते हैं और आके चले जाते हैं तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं मुझे यमन की तरफ से वही इश्क आ रही है। यानी वैसा करनी जब पहुँचे हैं तो उन्होंने, यानी एक इंसान अपने इलाके से चलता है वो इलाके की नुमाइंदगी करता है और उस इलाके के सोच व फिक्र की नुमाइंदगी करता है। 1400 बरस पहले वैसे करानी चले और उन्होंने यमन वालों की मोहब्बत को बताया कि यमन वाले मोहब्बत भी कर रहे हैं और मोहब्बत के कानून को भी जान रहे हैं। मोहब्बत ये है कि पैगंबर इस्लाम की ज्यारत करनी है, कानून ये है कि माँ बुला रही है तो वापस जाना है। यानी यमन वाले जो मोहब्बत करते हैं वो जज्बाती मोहब्बत नहीं करते, एक ही टेलर आया एक ही झलक आई लेकिन वे इंतहा खूबसूरत है। फिर इसके बाद हम और आप हमारे यासिर को देखते हैं कि ये वो हैं कि जो पैगंबर इस्लाम के उन साथियों में हैं जिन्होंने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का साथ दिया है। उस वक्त जो हालत बोहरानी थी दुरूद भेजे का मोहम्मद यमन का ये महाजिर जब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया है और फिर में आए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हिस्से में, तो फिर लोग हदीस पैगंबर इस्लाम को देख रहे थे और ये कह रहे थे कि ये देखो कि अम्मार कहाँ हैं, अम्मार अली के लश्कर में है कि अम्मार मुखालफीन के लश्कर में है। यानी यमन वालों की अगर हम अकीदे और ईमान की तारीफ करें तो माजी में हम देखते हैं तो वहाँ से हम उनके जज्बात को अपने अंदर समोने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मालिक अश्तर, यानी एक बात जो बयान की जाती है वो ये कि शायद ये कूफी हैं, और एक जो मुझे याद आ रहा है कि ये यमनी हैं और यमन से जब चले हैं तो यमन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर को संभाला है, तकवीत किए हैं। उनमें मालिक अश्तर हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत रखते हैं कि जो सिर्फ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अहद में इनकी शख्सियत नहीं बल्कि असर ज़हूर में ये वापस आएंगे। जिन चंद अफराद को असर ज़हूर में वापस आना है उनमें मालिक अश्तर भी वापस आएंगे। फिर हम देखते हैं कि यमन की जो चीज़ें हैं वो आज तक हमसे वाबस्ता हैं। मसलन मैं जब किसी से ये कहूँ कि आप मेरे लिए करबला से कोई तोहफ़ा लाइएगा, हिजाज से कोई तोहफ़ा लाइएगा, तो वो तोहफ़ा जो है वो कफन का तोहफ़ा होता है, कहते हैं मुर्दे यमानी लेके आइएगा, और मुर्दा मुर्दे यमानी को पहन के इतना खूबसूरत लग रहा होता है, उसके चेहरे पर इतना निखार आ जाता है कि क्या कोई दुल्हन खूबसूरत लगेगी। जो मुर्दे यमानी मुर्दे को खूबसूरत बना देता है, यानी ये मुर्दे यमानी यमन की ये जो आबा है, यमन की जो चादर है ये कब्र तक साथ जाती है। फिर इसके बाद अगर आप अकीक पहन रहे हैं कि जो 11वें इमाम ने आपको शियत की निशान मोमिन की निशानी में से एक निशानी बताई है तो बेहतरीन अकीक कौन सा होगा, वो बेहतरीन अकीक जो है वो यमनी अकीक है। यानी आप मोमिन की निशानी को भी अपने हाथ में लेंगे तो खूबसूरत और बेहतरीन अकीक जो है वो यमन का है। यानी हम यमन को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
लेकिन अफसोस के साथ ये आजकल यमन के जब नाम सुने के आपको अकीक आपके जहन में नहीं आता है, शायद बोल रहे यमन आ जाए लेकिन अकीक जहन में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर मौत के एक के खेले जा रहे हैं, वहाँ के बेगुनाह बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ के शहरों को तबाह किया जा रहा है, किस जुर्म में मारा जा रहा है एक सवाल है। आज आज के यमन में हम दाखिल हो जाएंगे, देखेंगे कि यमन के हालात सिर्फ यमन के हालात नहीं, یمن کے حالات کو، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کی محبت کا مسئلہ ہے، عقیدہ کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ اب اس سب کو دیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں اپنے سرزمین پاکستان کے حالات کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں کہ پاکستان اس تمام حالات میں کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھیں، اور یہاں پر پاکستان کے خارجہ پالیسی کو ہم دیکھنے کے لیے شاید آپ کے ذہنوں میں، آپ کے خیالات میں یہ نہیں کہ یہ بات ہوں گی، جب بھی ہم پاکستان کے نام لیتے ہیں بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، لوشن کے مسائل سے لے کر، ناامنی کے مسائل سے لے کر، مہنگائی کے مسائل سے لے کر بہت سارے۔ لیکن پاکستان ہمیشہ سے ایسا ہی نہیں تھا کہ ہمارے سرزمین پاکستان کبھی معیار سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بھی پوری دنیا کی نگاہ سرزمین پاکستان پر ہے، ایک ایک پاکستانی کے فیصلہ پر ہے، ایک ایک پاکستانی سوچ پر نظر ہے۔ مشرق و مغرب عالم میں سب پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو جاننے سے پہلے، ہم پاکستان کے موقف کو جاننے سے پہلے کچھ اور کریں گے۔ پہلے آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گی، دیکھیے ہم پاکستان یمنی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو یمنی کو ذرا ہم پہچان لیں گے، خوبصورت کو ذرا ہم پہچان لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ہی فیصلوں کے بارے میں بھی چند جملہ آپ کے خدمت میں گفتگو کریں گے۔ اور انصار اللہ اور غوثی میں کیا فرق ہے, اس فرق کو جاننے کے لیے ہم ہرمیٹرین کی طرف جائیں گے, اور ہرمیٹرین آپ ہمارے لیے واضح کر لیجیے گا غوثی اور انصار اللہ میں کیا
فرق ہے. فارغ نے جس طرح کے یہ ویڈیو واضح کی تھی, تھوڑا سا اس میں ظاہر بہت نچوڑ دیا تھا, اس لیے بہت کچھ مکس کر دیا تھا, لہٰذا زیدی اور حوثی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اور انصار اللہ اور حوثی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جس طرح انہوں نے ابتدان سے کہا کہ 92 سے جو ہے وہ یہ تحریک شروع ہو گئی تھی, نہیں بلکہ 92 سے حوثیوں کی تحریک شروع ہوئی تھی اور حوثیوں نے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ اس تحریک کو شروع کیا تھا, لیکن 2002 میں یہ تحریک اسلامی ہو گئی. اور کیسے اسلامی ہوئی, اور اتنی اسلامی ہو گئی کہ اس تحریک کا نام انصار اللہ قرار پا گیا. 2002 میں جو ہے جس طرح کے آغا حسین حوثی کو جو لکھا ہے سید حسین حوثی, انہوں نے بھائی محمد حوثی کا نام دیا نہیں, اپنے والد کے زیر سرپرستی انہوں نے اس تحریک کو کہنے اگر آغاز کیا نہیں, بلکہ تحریک کا آغاز بھی نہیں کیا, انہوں نے صرف لیکچرز دیے تھے. جو ہے سید حسین حوثی نے لیکچرز دیے سعدہ کے علاقے مران میں, امام الحادی مدرسہ امام الحادی میں ان کے لیکچرز ہوتے تھے. خود ان کی شخصیت کو بھی بڑے پہچاننے کی ضرورت ہے, کبھی موقعیت ہوگی بہت تفصیل سے بات کریں گے. یہ سید حسین حوثی کافی عرصہ عراق میں بھی رہے, اور ان کے چچا زاد عبدالحکیم ہیں, عبدالحکیم جنہوں نے البدر فورس بنائی تھی جمہوریہ اسلامی کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے, یہ ان کے چچا زاد ہوتے ہیں, اور البدر فورس بنانے میں ان کے ساتھ ساتھ تھے, اس دوران یہ عراق میں ہی موجود تھے. اس کے بعد 2002 میں جب انہوں نے آ کر لیکچرز دیے, ان لیکچرز کا نتیجہ یہ نکلا, لیکچرز فکری اور عملی اصلاح کے تھے, لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جوان انقلابی ہوئے, اور ان انقلابی جوانوں نے ایک تحریک شروع کر دی. خود یہ کہتے ہیں ہم کوئی جماعت نہیں ہیں, ہم کوئی جو ہے تنظیم نہیں ہے, بلکہ ہم ایک تحریک ہیں, ہم مسلمانوں کا ایک گروہ ہیں. اور یہ تحریک 2004 تک جو ہے اتنی بڑھ چکی تھی کہ فقط علاقے میں نہیں, سعادہ کے صوبہ سعادہ میں نہیں, بلکہ تمام یمن میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی. 2004 میں محمد حسین جو ہے سید محمد حسین کو شہید کیا گیا, ان کے بھائی ہوتے ہیں عبد المالک بدر الدین, انہی کے بھائی ہیں کہ جس کے بعد اس تحریک کو آپ نے سنبھالا. خود جو ہے بدر الدین آیت اللہ بدر الدین کہہ دوں شاید غلط نہیں ہوں, کیونکہ مرجعین میں سے تھے, مراجعین میں سے تھے زیدیوں کے. اور اس کے بعد یعنی دونوں باپ بیٹے نے بہت تیزی سے اس تحریک کو اور بہت تفصیل طلب, کبھی خدا نے جو ہے تفصیل کا موقع دیا تو بہت تفصیل سے عرض کریں گے کہ کس طرح انہوں نے کون کون سی تنظیمیں بنائیں, اور جس کا انہوں نے نتیجہ نہیں دیکھا, بالآخر نتیجہ آور ثابت ہوئی یہ تحریک جو ہے انصار اللہ. 2004 تک جو ہے فقط جو ہے صوبے میں نہیں بلکہ ملک کے کئی علاقوں میں پھیل چکی تھی, اور آپ کی شہادت کے بعد, سید حسین کی شہادت کے بعد تیزی سے تحریک نے پھیلنا شروع کیا, یہاں تک کہ یہ عوامی تحریک بن گئی. اور آج اگر ہم کہ انصار اللہ کون ہے, کہ وہی حوثی, اور حوثی کون ہے, وہی زیدی, تو شاید غلط نہ ہو ہمارا جملہ. یعنی اتنی تیزی سے یہ کہ آج عوامی تحریک بن گئی سید حسین حوثی کے جو ہے اس میں, اور اب عبد المالک اس کو چلا رہے بدر الدین, عبد المالک بدر الدین کے آپ نے حتماً ان کا دیکھو. اس کے بعد سے یعنی 2004 کے بعد سے ان پر 6 جنگیں مسلط کی گئی ہیں. آج میں آپ بیٹھ کر میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج پاکستان کو انوالو کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو اس میں ملوث کیا جائے, تو آج میڈیا پر بھی اس انداز میں نظر آ رہا ہے. اور گرچہ اس سے زیادہ 70 جنگیں ان پر جو ہے مسلط رہی ہیں, کہ 2004 کی پہلی جنگ جو تھی اس میں شہید کر دیا گیا سید حوثی کو, انہوں نے کہا گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بالآخر گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا نہیں, بلکہ بم بلاسٹ کیا گیا تھا آپ کے پیچھے پہنچ کے, اور اس کے بعد اس میں فقط آپ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کے کئی جانصار بھی اس میں شہید ہوئے تھے. تو یہ سید محمد حوثی کے بعد جو ہے وہ عبد المالک بدر الدین نے اس تحریک کو سنبھالا, اور پوری قوت سے اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور آج یہ پوری تحریک جو ہے پورے ملک میں پھیل چکی ہے, اور ایک عوامی تحریک کی طرز میں ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ان کے حوصلے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہیں پر ہم ان کے حوصلوں کو 6 جنگوں کے بعد یہ 7ویں جنگ ہے, لیکن کہیں ان کے جو ہے حوصلے پست ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. یہاں تک کہ ایک جگہ ایک جو ہے وہ جنرل کا بیان نظر آتا ہے, امریکی جنرل کا, کہ ایک جنگ میں ہم نے ان پر ساری رسد بند کر دی تھی, ایسی رسد بند کر دی تھی کہ دودھ کا ڈبہ تک ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اس وقت تک یہ تحریک عوامی نہیں ہوئی تھی, لیکن میں ان کے حوصلوں کو سلام کرتا ہوں, اس کے باوجود یہ اسی تندہی سے ہمارے مقابلہ کرتے رہے. تو ہمیں یہ تحریک اس انداز میں جو ہے انصار اللہ کی نظر آتی ہے. اگر ہم یہ کہیں یہ بامعرفت ترین افراد کی تحریک ہے تو شاید یہ جملہ غلط نہیں ہوگا.
کی ہولیا کے لیے اپیل کرتی ہے سوچنا پڑے گا. اور یہ صرف علماء کی بات نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کے لیے ضروری ہے سوچنا. یہ باشعور انٹلیکچوئلس کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ کیسے کریں کہ جگہ جگہ آگ ہمارے اپنے علاقے میں لگی ہوئی ہے. لیبیا میں آگ لگی ہوئی ہے, عراق میں آگ لگی ہوئی ہے, افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے, کینیا میں آگ لگی ہوئی ہے, صومالیہ میں آگ لگی ہوئی ہے, سوڈان میں آگ لگی ہوئی ہے, پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, یمن میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ سارے اسلامی علاقے, کیا وجہ ہے؟ اس پہ بہت سوچ بچار کی ضرورت.
کمٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے कोई सऊदी अरेबिया को अटैक नहीं कर रहा है, सऊदी अरेबिया की टेरिटरी में कोई इन्वेजन नहीं हो रहा है, बल्कि अगर कुछ हुआ है वो है सऊदी एयर स्ट्राइक्स यमन पे विदाउट अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, विदाउट एनी अथॉरिटी फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या हो रहा है? ये तो एक लगता है कि कोई एक वॉर ऑफ प्रीएम्पशन है जिसको हमने कंडेम किया था, जो इराक में हुआ था। कहने की बात यह है, कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, आप कैसे दूसरे मुल्कों पर बगैर कहें बस इसलिए कहते हैं कि हमें खतरा है, तो आप में और बुश में फर्क क्या है?
तो जफर इलानी साहब, पाकिस्तान और खासकर नवाज हुकूमत के सऊदी हुकूमत के साथ दिल्ली में ताल्लुकात है और वो पाकिस्तान की माली मदद भी करता है, ऐसे में अगर पाकिस्तान मदद न करे, फैसला करता है कि न करे, तो ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए, हम उनको डिफाई उनको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, मगर हम उनको इंस्ट्रूमेंट उनका फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी में हमारी फौज नहीं हो सकती। ये कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है, और अगर वो समझते हैं कि हम जो वो कहें करें, लीगल इनलीगल रॉन्ग हमारे लोगों की ख्वाहिश हो या ना हो, तो फिर ऐसी दृष्टि से मेरा ख्याल है दुश्मनी बेहतर है।
बिल्कुल
कर सकता है, 40 मिलियन शियाज हैं, अगर वो जानना चाहेंगे कि आप शियाज को, यमनी शियाज, ज़ैदीज, हूतीज दोनों शिया हैं, उन पे आप हमला कर रहे हैं, और एक उनका एक इंटरनल मैटर में आप सिविल वॉर में साइड्स दे रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर साइड दे रहा है शियाओं के खिलाफ, तो 40 मिलियन जो शियाज है पाकिस्तान में, उनको आप क्या सोचेंगे, वो क्या ख्याल होगा उनका कि ये हुकूमत जो है ये जो सऊदी कहती है वो उस पर मान जाती है? मेरे ख्याल में बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ना सिर्फ इंटरनली मगर हमारे रिलेशनशिप पे ईरान के साथ।
मोहतरम जफर इलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, काश मेरे पास और भी वक्त।
बहुत ठोस और संजीदा मौका मिल गया है पर, और हम अभी वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए बहुत जल्दी जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इन शाला तला हम फारन को और भी जहाँ देंगे। अभी एक डॉक्टर डॉक्टर अहमद उस्मानी का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के कुछ हिस्सा को हमने काट के आपके खाना में पेश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कि आप सब लुत्फानंदोज़ होंगे, लेकिन लुत्फ़ की बात तो नहीं है, हो सकता है आप तंदुरुस्त हो जाए, देख लीजिएगा। आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब हमारा बड़ा वारिस है, इसकी सरजमीन पर उदानी के हिसाब से इतने पाकिस्तानियों के सर अलग हो जाते हैं, हम बुरा नहीं मानते। तो यमन में मरने वाले पाकिस्तानियों के क्या अफसोस करें, हमें तो खुशी इस बात की है कि इन गुनाहगार पाकिस्तानियों को हरमैन शरीफ़ैन के मुक़द्दस गोले बारूद से मौत नसीब हुई है, मरना तो हर किसी को है। सुधार के बाबरकत असलहा से हासिल मौत का मरतबा तो नहायत बुलंद है, क्योंकि ये तमाम असलहा मेडन USA मगर जो कि सऊदी अरब से गुजर चुका है, लिहाजा नजासत के मुजमरा से यकीनन पाक होगा। और इन्होंने आर्टिकल के आखिरी हिस्से में कुछ जुमला और कहा कि दाइश हुसैन के मसाजिद में बम धमाके कर रहे हैं, रियाल और डॉलर से मुतासर जमातों ने तहफ़ुज़ सरहदी निशरबे के नाम पर अवामी रब्ता मुहिम जारी की है, ज़रूरत है अपने ज़मीन से एक सवाल तो किया जा सकता है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफ़ैन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ इसराइल या तहफ़्फ़ुज़ मफ़ादत रसूल का खेल तो जारी नहीं है? ये हर एक सवाल है, हर मुसलमान का सवाल है, हर बीदार मुसलमान का सवाल है, हर बाज़मीर मुसलमान का सवाल है, और हर एक अपना मौक़िफ़ तो जानना चाहते हैं। आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि एक उम्मीद के साथ कि यमन की जंग आखिरी जंग हो, यमन में जो खूनरेजी हो रहा है वो आखिरी हो, आखिरी भी हो सकता है, जारी भी रह सकता है, आखिरी हो सकता है अगर इस वक्त हम अपने जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करें, हम अपने जिम्मेदारियों को पहचान लें, अपने मौकफ को पहचान लें और अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल करके भी इंशाल्लाह। और ये हालात जो आज आलम इस्लाम के चेहरे में, इराक का चेहरा है, सीरिया का चेहरा है, फिलिस्तीन का खाता है, लीबिया और यमन है, एक ऐसा दिन आएगा پاکستانیوں کے یمن کے رہنے والے پاکستانیوں کے انٹرویو کو نشر کرنا تھا وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے، متاثرانہ ہم اسے درگزر کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یمن کے ان اور صورت حال ہے تو یہ ہے کہ زمانے کے ظہور کے علائم میں شمار کیا گیا ہے یمن بار
داخلی پالیسی کے حوالے سے گرچہ قرارداد منظور ہو چکی ہے، تین روز کی کاوشوں کے بعد پارلیمنٹ نے جو اکثریت نے مخالفت کی تھی قرارداد منظور ہو گئی تھی کہ فوج نہیں بھیجی جائے گی، قرارداد یہ منظور ہو گئی تھی کہ اس کے بعد جو یمن سے آنے والے ہیں ان کی مدد کی جائے گی، ان کی حمایت کی جائے گی، لیکن اس کے بعد شدید مخالفت کا بعض لوگوں کی، نہیں اکثریت، بعض لوگوں کی طرف سے سامنا رہا اور ابھی تک یہ معاملہ پینڈنگ میں ہے، یعنی گرچہ جو ہے اس معاملے کو مثلا قوامی سطح پہ کہا جائے تو قبول کر لیا گیا کہ فوج نہیں جائے گی، اور حتیٰ کل جو ہے وہ حسن نصر اللہ آوا صاحب نے بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت بات کی، پاکستانی پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے وہ صدر راہ ہوئی جو ہے وہ بھیجنے سے، فوج کے بھیجنے میں بھارت، لیکن ایک انتباہ چودھری جاوید ہے ظاہراً آرٹیکل بھی لکھنے بڑا اچھا دیا اور میں چاہتی تھی وہ بھی پہنچا دوں، کہا کہ ایسا نہ ہو تنزن کہا، چونکہ میں ان کے جملے نہیں نقل کر لی لہٰذا شاید طنز آپ تک نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے تنزن کہا، کہیں ایسا نہ ہو ہمیشہ کی طرح ایک جعلی بیان دیا جائے اور اس میں کہا جائے کہ حرمین شرفین پر یمن حملہ کر رہا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو کھڑا ہونے کو کہا جائے، کیونکہ لوگ سعودی آلے سعود کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، جو سعودی اسٹیٹ کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، لیکن حرمین شرفین کے لیے ہر ایک کھڑا ہوگا اور ہر ایک اپنی جان کو جو ہے وہ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس بنا پہ انہوں نے کہا، انتباہ دیا، متنبع کیا کہ ممکن ہے ایسا جعلی بیان آئے اور اس کے بعد جو ہے کھڑا کر دیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے تنزل کہا، کیونکہ بھکاری قوم کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا، یہ اس پہ طنز کیا کہ جس نے جو ہے سعودی شہزادے نے جو ہے سخت جملوں میں جو ہے قوم کو ایک طرح سے میں کہوں گی ان کی غیرت کو لڑکا رہا تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن اس انداز میں انہوں نے طنز کر کے پھر غیرت کو للکارا ہے کہ ایک قوم کا بالآخر کیا فریضہ بنتا ہے، اس اعتبار سے جب اس کے لیے ایسے سخت جملے استعمال کیے جانے لگے عالمی سطح پر، بہت معذرت۔
یہ ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے ہمیں ذمہ داری کیا ہے، ہر حالت میں یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کرتے ہیں، دنیا میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، ہمارے ملک میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، اپنے مسلمانوں کے ساتھ مختلف حالات ہوتے ہیں، ہمارے اپنے شہر میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، تو غالباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ تو سب کچھ یمن میں ہو رہے ہیں تو یمن میں نہیں جا سکتے ہوں، آپ ہی نہیں جا سکتے، آپ رہنے والے کیا ہیں، آپ سکون ابھی یمن میں جا رہے ہیں جہاں کے لیے، پھر کچھ ذمہ داری تو یقیناً ہے، ہم یہاں رہ کر یہاں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے شہر میں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کی دکھائیے آپ دیکھیں، بہترین ذمہ داری اس وقت ادا ہوگی جب ہمارے آگاہی میں اضافہ ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، ہماری دینی آگاہی میں اضافہ ہو جائے، ہمارے سیاسی آگاہی میں اضافہ ہو جائے، ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں، دشمنوں کے طریقوں کو پہچانیں، اپنے دوستوں کو پہچانیں، اب یہاں پر ہم آگے جائیں گے، دوستوں کو پہچان لیجیے گا، ایک بیان آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں سے گزر جائیں گے جو واضح ہے ان شاء اللہ،
اختلافات متعددی در مسائل گوناگون आज के मनाजिर हैं, अगर आज
आएगी, जाएंगे आपको सदा आएंगे, यहाँ पर हम लोग की आवाज़ें आएंगी, बच्चों की चीख पुकार के आवाज़ सुनाई देंगी। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा अपने घरों में बैठकर भी ये सब कुछ सुन लें और अपने घरों में बैठकर भी ये सब कुछ देखने की कोशिश कर लीजिएगा, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों अदा करने में कहीं पीछे रह ना जाए। अब मैं अर्जन अपने दोस्तों से यहाँ पर चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, किस तरीके से हम दूसरों तक यहाँ पर आगाही देने का तरीका भी आपके सामने मौजूद है। मीडिया, आप कहेंगे मीडिया पर तो हम नहीं हैं, मीडिया आपके हाथों में है, ये मोबाइल एक मीडिया है, एक पैगाम जो जा रहा है एक मीडिया है। आप अपने गुफ्तगू में दोस्तों के हल्के में जब बैठते हैं वो खुद एक मीडिया है। आप किसी से रब्ता करते हैं तो उस आपके साथ ये तमाम के तमाम मीडिया के हिस्सा है, हमेशा हर एक मीडिया का एक हिस्सा है। और दूसरों के लिए अब तो ज़्यादातर ही अपने शस्त्रों में भी आगाही खिला सकते हैं, अब अपने दो तीन दोस्तों के दरमियान में भी आगाही पहुँचा सकते हैं। सियासी बायकॉट या तसादी बायकॉट, लेकिन ये कभी वैसे इस पर ज़्यादा हमें गुफ्तगू करने के बाद नहीं है कि इंशाल्लाह अगर आपको सवाल हो पीर के दिन यहाँ पर असद अपार्टमेंट में जो क्लासें होंगी बाकी खाना वहाँ पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला। आपके अगर कुछ एक नाम जहनों में रह जाए तो वहाँ पर जाएँ और सवाल पूछ लीजिए। और कभी ये भी ज़रूरत पेश आती है कि हम अपने जज्बात का इजहार करें, अपने मोहब्बत का इजहार करें, अपने दुश्मनियों का इजहार भी करें, बॉक्स का इजहार करें। ज़्यादातर अशरफ हमें यही सिखाते हैं आप इजहार करें, इतनी सिर्फ लिमन सारा नकुम जब आप कहते हैं आप इजहार करते होते हैं, आप जब कहते हैं इतने हर मन लिमन सारा नकुम ये इजहार हैं। और कभी कभार इजहार मुख्तलिफ शक्लें होते हैं, आप आज़ादारी में शिरकत करते हैं, मोहब्बत के इजहार भी हैं, दुश्मन से दुश्मनी का भी इजहार है, जिस तरह दोस्त से दोस्ती का इजहार है दुश्मन से दुश्मनी का भी इजहार है। अब हमें जज्बा के एक नमूना चंद दिन पहले हमारे शहर कराची में सामने आ गया, शायद मैं भी नहीं गई आप भी नहीं गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे कौम के अफराद बेदार हैं और अपने बर वक्त हालात को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। ये एक हफ्ता पहले की मनाजिर है कि यही शहर कराची में सामने आ गया, ये मरियों की हिमायत में, मजलूमों की हिमायत में, बगैर किसी के बुलाए आवाम खड़े हो गए और आपने मोहब्बतों का इन्होंने इजहार पेश कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं सबसे अहम तरीन जगह, अब क्या करें, क्या हम क्या कदम उठाएं, सबसे अहम तरीन कदम आपके नजदीक क्या है, खासी माँ बता सकते हैं। अगर आप हजन भी कुछ सवाल पूछना चाहें हमारा भी हाजिर है, पहले हम आप हजन से जानना चाहते हैं।
मैं इस सवाल को मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वक्त नहीं है, खुलासतन जवाब ये दूंगी कि अगर हम वापस पलटते हैं किधर से यमन तक, तो वो तहरीक जो हजरत उज़ैर
सवाल
इत्तेहाद की अगर हम क्लीन कहें वहाँ पर जमा एक किलीद और तुर्जी कहें तो अल्लाह की राह में मोहब्बत और अल्लाह ही की राह में दुश्मनी, यानी अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी का इजहार जो हमारे ख़त्म होता जा रहा है। हमारी मोहब्बतें भी ज़ाती होती जा रही हैं, हमारी दुश्मनियाँ भी ज़ाती होती जा रही हैं, छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक, मफादात की मोहब्बत, मफादात की दुश्मनी। इससे निकल कर हमें जो चीज़ पैदा करनी है, जो शऊर देना है, वो ये कि खुदा के दोस्तों से दोस्ती और खुदा के दुश्मनों से दुश्मनी, और उसके साथ साथ अहले बैत के दोस्तों से दोस्ती और अहले बैत के, मेरे ख्याल में किलीद और कुंजी है या रस्सी है खुदा तक पहुंचने की, तो शायद गलत नहीं होगी ये बात।
यमन से जो लोग वापस आए और उससे पहले जो हमारा मीडिया बता रहा था, तो वहाँ जो मीडिया को फिक्र थी वो ये फिक्र थी कि वहाँ शिया अहले सुन्नत को मार रहे होंगे, वहाँ शिया सुन्नी जंग हो रही है, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने जो बयान दिए उससे पूरे मीडिया की सोच फिक्र बदल गई। वो जो कुछ पहले सोचा जा रहा था कि वहाँ खानदेंगी हो रही है, मजहबी सतह पे हो रही है, लेकिन जितने भी लोग आए उन्होंने आने के बाद जो मीडिया पे बयान दिया, तो उसमें जो बात हाईलाइट हुई वो ये कि वहाँ पे मस्जिद जो है वो शिया सुन्नी की नहीं है, मस्जिद एक ही है जिसमें सुन्नी भी नमाज पढ़ सकता है और शिया भी नमाज पढ़ सकता है। हमारे यहाँ जो कुछ भी अगर हम इस जंग के नतीजे में लेना चाहेंगे, यमन का हम क्या साथ दे सकते हैं, तो ये इखलाकी एतबार से, इकतसादी माशी एतबार से और मजहबी एतबार से, तो इखलाक और मजहब का भी ये बता रहा है कि जो कुछ वहाँ से हमें खबरें मिल रही हैं तो कम अज़ कम हम उसको तो जारी करें। शिया सुन्नी हमारे यहाँ एक मसला है, हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं है कि सुन्नी शिया की मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा या शिया सुन्नी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा। ये खूबसूरत इतिहाद जब अभी हम देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत खबर आ रही है, तो कम अज़ कम हम इस सतह पे काम शुरू करके इस खबर को अमली नामों पहनाने की कोशिश करें। पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि अमली मैदान में हमें उतरना पड़ेगा, वो तासुब की जिसकी वजह से हम अपने एलिस्टर बरादरान से दूर हो चुके हैं। यमन में ऐसा नहीं है, यमन की खुशखबरी है कि यमन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले अगर हम माजी में जाते हैं तो शिया सुन्नी आपस में शादियाँ क्या करते थे, आपस में लड़कियों की शादी के मौके पर जो महल्ले की खवातीन होती थी वो रुखसत होके दुल्हनों के साथ घर जाया करती थी, एक दूसरे के लिए मौत और शादी के मौके पर घरों को खोल दिया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जिसको इतना शिद्दत से इस्तेमाल किया गया, हर जगह में इस्तेमाल किया गया, सीरिया में इस्तेमाल किया गया, इराक में इस्तेमाल किया गया, आज यमन की बारी है, यमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ न कि इस्तेमाल किया गया बल्कि हमें पुरतशद भी बनाया गया एक दूसरे के लिए, तो कम से कम हम यहाँ पर किस सतह पर तो सफाई कर सकते हैं। इस सतह पर हम जब अपने माहौल को खूबसूरत करेंगे तो वो लोग के जो इस वक्त यमन के खिलाफ प्रोपेगेंडे के शिकार हैं, कम से कम हम उनके जहन को धो सकते हैं। हुकूमती सतह पे अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो पार्लियामेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और पार्लियामेंट में हज़्ब इत्तेहाद, हज़्ब इख्तिलाफ सबका जो वोट है वो इस वक्त यमनियों की तरफ है। तो बहुत हसास वक्त है, बहुत हसास वक्त में अपने फिक्र को उजागर करें। सिर्फ वो ज़राए इब्लाग तो मेरे पास हैं जो जिनके ज़रिए हम मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी ज़राए इब्लाग पे मैं और आप एक दूसरे की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी अगर आप व्हाट्सएप खोलें तो आप देखेंगे कि भरमार है कि एक दूसरे को जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसके बरखिलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जंग दोस्तों हमारे पास है, इब्लाग ज़राए इब्लाग हमारे पास मौजूद है, इसके ज़रिए अगर हम बर्थडे कर सकते हैं तो इसके ज़रिए हम इतिहाद का पैगाम भी दे सकते हैं, इसके ज़रिए हम यमन की खबरों से बाखबर भी कर सकते हैं। वो हमारे पास जो खबरें आती हैं कि जिनसे हमें लगता है कि माशरे में फलाह बहबू हो सकती है, उनको एक दूसरे से शेयर करके एक दूसरे को मुस्तहकम करके खड़ा करना है। इसलिए कि अगर बकौल हार के कि अल्लाह करे कि ये जंग आखिरी हो, अगर ये आखिरी नहीं हुई तो खुद तो आग में लिपटा हुआ है। इस खत्ते में आप मुसलमानों की आबादी को देखें कि आग के खत्ते में लिपटी हुई आबादी है। इस वक्त इस जंग के बाद कहाँ मामला जाएगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कोई भी सूरत हाल पाकिस्तानी किसी भी सूरत से अलहदा नहीं हो सकते। और हमारा फिर काम यही होगा कि हमारे आधे बरादरान हमारे खिलाफ मुख्तलिफ महादों पर लड़ते रहेंगे, हमें उनको देख के यमनियों को अपने अंदर दूरंदेशी पैदा करनी पड़ेगी, और वहाँ से हम अपना यहाँ से हम भी अपना काम शुरू करें।
एक बहुत खूबसूरत मौक़ों पर आ रहे हैं, तो सुबह تناظر میں دیکھیں گے یمن کو، یمن کو حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھ لیا، یمن کو ماضی میں بھی دیکھ لیا، حال میں بھی دیکھ لیا، عقیدہ یمن بھی لیا ہمارے ہاتھوں میں سر لیا، زینت بن گئے. اب سب سے خوبصورت ترین منظر یمن کا ظہور کا منظر ہے، جو اجل بہتر کی جملہ بہت پیارا ہے، ظہور کے منتظر یمن پر اپنی نظریں رکھیں. نظریں رکھنے کی کیا مطلب ہے؟ ہر مرتبہ آپ فرمائیں
اس کے حالات کو جو ہے وہ متوجہ رہیں، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ ایک چنگاری اٹھے گی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی. تو اس سے ایک جو مراد دی جاتی ہے وہ عالمی جنگ کا ہونا بھی مراد دی جاتی ہے، لیکن بالآخر اس کے حالات کو دقیق دیکھنا، لشکر یمانی کا یہیں سے چلنا، یہ تمام مجھے آپ کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یمن کے حالات بالآخر، کیونکہ روایت کے یمن کے تحریک کی کامیابی کے یا انقلاب کی کامیابی کے کچھ ہی مدت میں امام کا ظہور ہے، یعنی تعین نہیں کیا، لیکن سب سے زیادہ جو قریب قرار دیا گیا وہ یمن کے انقلاب کی کامیابی سے قرار دیا گیا. انشاءاللہ اگر یہ وہ تحریک، اگر البتہ انشاءاللہ وہی ہے، اگر نہیں بھی تو تمہید حتماً ہے، اس کی حتماً ہماری نظریں ہیں کہ تمہید ہے، اور اس لیے متوجہ رہنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق آمادہ و تیار رکھنا، اور جو ہے عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ بالآخر اہمیت کا حامل ہے.
تو کہیں ایسا تو نہ ہو یمن پر نظر رکھنے کے مطلب ہم چینل پر نظر رکھیں گے، نیوز پر نظر رکھیں گے، پروگرام پر نظر رکھیں گے، میڈیا سے ہٹ جائے گا، ہمارے نظریں بھی ہٹ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اور مزید اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں ہر سما. جی جی،
یہ جو حدیث، یہ جو جہاں آپ آغائی بیجت کے بیانات کو دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس حدیث معصومین علیہ السلام میں بھی ہے کہ یمن سے نکلنے والا شخص جو ہے وہ ایسا انقلاب لائے گا کہ ایران کا انقلاب اور یمنیوں کا انقلاب آپس میں یعنی اتنا گہرا رابطہ ہوگا کہ دونوں انقلاب کو یاد کیا جائے گا. اب اگر اس وقت میں اور آپ ریبر کی، اس وقت میں نے اور آپ نے گفتگو سنی، ریبر نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ زیدی، ریبر نے کہا یمن میں شیعہ سنی زیدی سب، یعنی اس کا مقصد ہے کہ شیعوں کا گڑھ آج بھی یمن ہے، اور جو کچھ بھی اس وقت ہم جنگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں وہ صرف سیاسی طور پہ نہیں دیکھ رہے، ہم یہاں پہ ظہور کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظہور یہاں سے بہت نزدیک ہے. یعنی اگر اس جنگ کو ہم صرف خبروں کی حد تک رکھیں گے کہ تصویر آتی ہے، ایک بار میڈیا کا تو حال یہ کہ پہلے دن جنگ ہوئی تو انہوں نے ہمیں بھڑکانے کے لیے ایسی ایسی پرتشدد تصویریں دیں، اس کے بعد آپ مجھے آج بتا دیں کہ ایسی تصویریں آپ کو ملیں گی، حالانکہ یمن میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی میڈیا چاہتا ہے ہم کو بھڑکاتا ہے، میڈیا چاہتا ہے وہ ہم کو بٹھا دیتا ہے، تو اگر اس نے ہم کو بھڑکایا تو کیا ہم بیٹھ بھی اسی کے کہنے سے بیٹھ جائیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا نا. اب ہم اور آپ تلاش کریں گے کہ یہ راستہ اگر ظہور کی طرف جاتا ہے، وہ جنگ کر رہے ہیں، ہم اس وقت امن کی حالت میں ہیں، تو امن کی حالت میں اس ظہور کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ یعنی صرف خبریں تو نہیں دیکھیں گے نا، وہ ادھر کام کر رہے ہیں، ہم اپنا ادھر کا کام جاری رکھیں گے. اور اگر ہر طرف سے جو میں اور آپ اس وقت پاکستان کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے لیاقت علی خان کی جو پرانی گفتگو ہے وہ بھی دیکھی، تو اس ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں، عالم اسلام میں پاکستان کی اہمیت بہت ہے، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، پاکستان عالم اسلام کا ایک جز ہے، حالانکہ ہم گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، کھلونا بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اہمیت ہے. لیکن اہمیت کو سمجھیں، اگر میڈیا اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اہمیت سے بے خبر ہو جاؤں تو ہمیں خبردار رہنا ہے، خبردار رہنے کے لیے خبروں سے آشنا رہنا ہے، اور خبروں سے آشنائی جو ہے وہ ہمیں ظہور تک لے جا سکتی ہے عملی صورت میں. وہ وہاں جنگ کر رہے ہیں، یہاں ہم عمل پیش کر کے یہ بتائیں گے کہ زمانہ ظہور کیسا ہوگا، کیونکہ بو آ رہی ہے، زمانہ ظہور کی بو آ رہی ہے. یہاں مجھے اور آپ کو بتایا کہ وہ اہل تصنع اور اہل تقیم ایک ہیں، وہاں مسجد ایک ہے، زمانہ ظہور میں یہ ہوگا. ابھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے، تو پھر اگر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو بنا لینی چاہیے نا، مجھے اور آپ کو ایسا ماحول بنا لینا چاہیے. تو اب اگر میں اور آپ اس جنگ کو اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارے اسکالر زیدی صاحب بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، بہت ہمتوں کو بلند کیا کہ ہم بے انتہا خوبصورت زمانے میں ہیں، ہم جس زمانے میں ہیں بے انتہا خوبصورت زمانہ ہے، خبروں کی خبریں ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور پھر اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر فرزند زہرا آئے گا،
फिर फर्जंद जहरा आएगा, फिर फर्जंद जहरा से अच्छा जुमला कहा इंतज़ार करते हुए जाम शहादत से नोश किया और फिर दुनिया से रुख्सत हो गए। अल अजल तो कहते हो आ गए तो क्या
जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ये तहरीक जो चली हुई है ये वाकई इनके जब हम अल्फाज या जुमले देखते हैं हमें अंदाज़ा होता है बहुत बामार्फत लोगों की तहरीक है। अभी कल एक जर्नल ने वहाँ पर जो है जनरल शरफ ने जो है वो बयान दिया, बड़ा प्यारा जुमला था, मैं चाहती थी वो भी आप तक पहुँचा दूँ। इंशाल्लाह वहाँ हमारी राहों को जो है मशल का काम देगा ये जुमला कि ये जनरल कहते हैं कि हम जो सऊदी अरब के जाहिलियत के मुकाबले खड़े हैं हमारे लिए बाई से फ़ख्र है। अजहर ये हमारे लिए बाई से फ़ख्र है इसलिए कि सऊदी अरब के साथ अमरीका है और हमारे साथ हमारा खुदा है। ये जुमला वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा और अंदाज़ा हुआ कितने बामार्फत लोग हैं जो ये क़याम कर रहे हैं। इंशाल्लाह यही क़याम यही तहरीक इनकलाब इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होकर इमाम की ज़हूर की राह को हमवार से हमवार तर करना पड़ेगा। के हवाले ही से क्योंकि बीबी सैयद असलम उल्लाह रह का जो है ये माह मुबारक है, बड़ा खूबसूरत जो है ये गर्चे कसीदे का शेर है। नक्श पासे तेरे हर तरफ बन गई जिंदगी फातिमा, बखुदा ऐसे ही है अगर चाहते हैं फातिमी बनना तो हमें नक्श पा पर नज़र रखनी होगी। हर जमाने में वो चाहे बर्मा पे होने वाला जुल्म हो, कश्मीर पर होने वाला तजावुज हो या यमन पे होने वाली जो है जाहिलियत हो, हमें देखना होगा फातिमी कुने कैसे हो सकते हैं, फातिमी कैसे बन सकते हैं। नक्शेपा पर जो है वो कदम रख के इंशाल्लाह अपनी जिंदगियों को भी संवार सकते हैं, अपनी जिंदगियों को भी बासादत बना सकते हैं और इंशाल्लाह मशहूर भी बासादत तरीके से हो सकते।
ختم ہوئی تھی. تحریک میں ہم نے ملکوں کو دیکھا کہ جس کو ساتھ امام نے متعارف کرایا, اور آج ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام کا رتبہ ان تمام علاقوں پر اچھی طریقے سے ہو چکا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اس غلبے کے اندر ہم اور آپ اپنے آپ کو شامل کر لیں, اور کیونکہ ہمارا ملک ایک اہم خطۂ جغرافی حیثیت رکھتا ہے, ہماری وہ صلاحیتیں کے لیے منتظر ہونی چاہیے وہ بیدار ہوتا ہے.
حارث سمکی صاحب السلام علیکم, ایک درود پڑھ لیجیے گا.